Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Bolo, bolo. Hare bol. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Sri Shweta Ganga Dham ki, Sri Shweta Ganga Dham ki, Sarvabhauma Bhattacharya Maharaj ki, Jagannath Puri Dham ki, Yathai Gaur Premanande, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो आप सबका इस 26 दिसंबर 2015 के दोपहर को श्वेत गंगा धाम में जगन्नाथपुरी में स्वागत है. इसके पहले हम गंभीरा मंदिर में गए थे. आपको शायद याद होगा कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के अंतिम दौरे में, यानी कि अंत्य लीला में, यानी कि आखिरी 18 साल उन्होंने यहाँ पर निवास किया, और जब वो यहाँ पर आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो राजगुरु थे राजा प्रताप रुद्र के, जो गजपति जगन्नाथपुरी के राजा हैं, उन्होंने और राजा ने मिलकर सब वैष्णवों का रहने का व्यवस्था किया. तो ये राजगुरु सार्वभौम भट्टाचार्य का निजी निवास स्थान है, जिसको श्वेत गंगा कहते हैं. वहाँ पर आपने देखा श्वेत माधव भगवान की मूर्ति, श्वेत गंगा की मूर्ति और मत्स्य माधव की मूर्ति आपने दर्शन किया. ये श्वेत गंगा है, साक्षात गंगा यहाँ प्रकट हुई है जगन्नाथपुरी में. और यहाँ आने के पहले सार्वभौम भट्टाचार्य मायापुर में थे. एक जगह है वहाँ पर विद्यानगरी नाम का, वहाँ पर उन्होंने अपना खुद का विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का आरंभ किया था. और मिथिला में जाकर एक विद्वान से उन्होंने सारे शास्त्र सीखे थे. और मिथिला के विद्वान के पास ऐसा नियम था कि कोई भी कुछ नोट्स नहीं बनाएगा, जो सुनेगा याद करेगा वही उसका ज्ञान. तो ये इतने बुद्धिमान थे कि जो भी उन्होंने सुना, सब कुछ सुना उन्होंने, अच्छी तरह से उसको ग्रहण किया, मायापुर में आए और सब उन्होंने उतारा. तो ये सबसे बड़े उस समय के ज्ञानी थे। और विद्यानगरी ने उन्होंने विद्यानगरी बसाई, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने अपना कलम जमीन पर घुसाया और वहाँ पर एक अद्भुत प्रकार के पेड़ उत्पन्न हुए जो आज तक बॉटनी के किसी भी वर्गीकरण में नहीं आए हुए हैं। ऐसे बहुत ही अद्भुत पेड़ वहाँ पर हैं जो महाप्रभु चैतन्य के कलम के द्वारा इनके नगरी में, विद्यानगरी में प्रकट है। पूरा जंगल है उसी पेड़ का, आज तक बॉटनी के लोग उसको पहचान नहीं सके वो कौन सा पेड़ है। तो उस जगह पर उन्होंने बहुत पंडितों को सिखाया, शिक्षा दिया और महाप्रभु जी के अंत लीला में सहभाग लेने के लिए संन्यास होते ही वो जगन्नाथपुरी में आए। जगन्नाथपुरी में आते ही, क्योंकि वो बृहस्पति के अवतार थे, बड़े विद्वान थे, तो राजा प्रताप रुद्र ने हमको उनको राजगुरु के रूप में स्वीकार किया। राजगुरु का बहुत बड़ा पद होता है, हा? उनका बड़े जाओ, उनका ऐशाराम, उनका सम्मान, बहुत अधिकार उनको होता है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर उनका बहुत बड़ा अधिकार था। तो सबसे पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे थे, तो यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर आगे एक जगह है, उसका नाम है अठार नाला। वो 18 गंगा नदी के छेद हैं उसमें, वहाँ से पानी निकलता है। ब्रिज के अंदर 18 ऐसे गैप्स हैं, तो 18 नाले निकलते हैं, मतलब अठार नाला ऐसे पानी। वहाँ पर सबसे पहले श्री गौरांग महाप्रभु को जगन्नाथपुरी के मंदिर का कलश दर्शन हुआ, तो वही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बहुत आनंद विभोर होकर नृत्य किया। सब भक्तों ने वहाँ दर्शन किया। फिर जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ से जो भागना शुरू किया सीधे पुरी तक, मानो ग्रैंड रोड तक, जैसे ही वो रास्ते पर आए जगन्नाथपुरी के, दोबारा तो दर्शन जब हुआ तो उनको मंदिर के शिखर पर एक सुंदर श्याम वर्ण के बालक का दर्शन हुआ। तो दोनों हाथ से उनको पुकार रहे हैं, आइए आइए करके। तो उनको देखकर हवा की गति से भगवान दौड़ पड़े चैतन्य महाप्रभु, और सीधे जब मंदिर में इतने हवा की गति से तेज भाग कर दौड़ पड़े और जगन्नाथ का दर्शन किया, तो एकदम बेहोश होकर गिर गए। जिससे कि सुनहरा डंडा, स्वयं प्रकाशित स्वर्ण रंग का डंडा जो है वो जमीन पर गिरा हुआ है, प्रकाशमान लेकिन बेहोश अवस्था में। जैसे वो भाग रहे थे उस समय सारे द्वारपाल भाग के आए, उन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया, तो लगा कोई पागल व्यक्ति होगा शायद, पकड़ने का प्रयास किया उनको, लेकिन महाप्रभु जी उनके पकड़ में नहीं आए। लेकिन जब गिर गए तो सारे सैनिक सोच रहे थे कि कोई पागल व्यक्ति है, उसको उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। तो जब उनको वो उठाने को ऐसे आगे आए, उतने में सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ पर आए, क्योंकि वह अद्भुत घटना थी, कोई ऐसा तेज पुंज तेजायमान व्यक्ति संन्यास वस्त्र में इतने आवेग में भाग के आ रहे हैं। तो बड़े विद्वान थे वो, उन्होंने तुरंत सैनिकों को हाथ लगाने से रोक दिया और उनके शरीर का जो नियंत्रण है अपने पास ले लिया। वो बड़े विद्वान थे, उनको पता था कि भक्ति के आनंदमय लक्षण क्या होते हैं। जब कोई भक्त आनंद विभोर होता है तो उसके अंदर 8 लक्षण प्रकट होते हैं। तो उन्होंने उसका स्टडी किया और देखा कि 8 लक्षण जो है भक्ति के इनके शरीर में बेहोश अवस्था में है, लेकिन वो उनको पहचान सके कि ये व्यक्ति दिव्य भाव में है। फिर रुई लिया और उनके नाक पे पाम ने रखा तो हल्के हल्के रुई हिल रही थी, मतलब सांस मानो बंदी थी, लेकिन एकदम शायद 100 भाग उसका चालू था। तो वो समझ गए कि ये व्यक्ति मृत नहीं है, बेहोश भी नहीं है, ये दिव्य भाव में है। तो उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि इनको बड़े आदर से उठाया जाए, और ये इतने महान अधिकारी थे कि इनके घर से सीधे मंदिर तक एक बोगदा था, क्या कहते हैं उसको, टनल, प्राइवेट रोड, मतलब वो आम रास्ते से कभी यात्रा नहीं करते थे, इतने वो महान थे अधिकार से। उनके सीधे घर से एक भुयार खुला होता है, हम जाएंगे आपको दिखाएंगे, अभी वो बंद हो चुका है, लेकिन वहाँ पर मार्ग जो था शुरुआत उसकी, मुख जो है वो दिखाई पड़ता है। वहाँ से वो चलते थे पूरे इंसान की साइज पूरी, और चल के वो जाते थे सीधे मंदिर का गर्भगृह में खुलता था। तो वहाँ से उन्होंने ये शरीर को, मतलब चैतन्य महाप्रभु को, उठाकर अपने घर पे लाया और घर पे रखा। बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे। उतने में क्या हुआ, जब महाप्रभु हवा की गति से भाग के निकले तो उनके साथ जो भक्त थे वो उनका स्पीड को मैचअप नहीं कर सके, क्योंकि वो पीछे रह गए ना, अठारनाला से भागना शुरू किया तो वो भाग नहीं सके उनके द्वारा, उनके साथ। तो बहुत देर बाद भक्त लोग, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य सब लोग भाग भाग के आए और मंदिर में पूछा, तो मंदिर में बोले कि अभी अभी तो एक बेहोश व्यक्ति था यहाँ पर गोल्डन कलर का, उसको उठा के ले गए वो। तो फिर वो कहाँ गए कहाँ गए, वो तो सार्वभौम महाराज भट्टाचार्य के घर पे चले गए। तो भक्त लोग सब भाग भाग के उनके घर पे पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारा साथी यहाँ पर है। तो वो कहते कि वो बेहोश है। तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वो बार बार बेहोश होते हैं कोई नई बात नहीं है। तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग कीर्तन करते हैं और कीर्तन करने से बेहोश से होश में आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और सब भक्तों ने मिलकर सुंदर कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय महाप्रभु जी होश में आए। फिर उनकी दिव्य स्थिति को देखते हुए आदरपूर्वक उन्होंने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ का महाप्रसाद मंगाया और चैतन्य महाप्रभु को उसको आस्वादन कराया। उसके बाद में कहा कि आप हमारे घर पर रहिए, तो वहीं पर कुछ दिन रुके। उसके बाद में उन्होंने देखा, सब जानकारी कर ली, नाम पूछा, कौन से गांव से हैं, कितनी उम्र है, संन्यास कब लिया, गुरु कौन है, सब 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 पूछ लिया। तो कहते हैं कि आपने तो संन्यास तो भारतीय संप्रदाय में लिया है, मैं आपको किसी श्रेष्ठ लाइन में संन्यास दिला सकता हूँ। आपका संन्यास जो मार्ग है, वो जो संप्रदाय है, जो भारतीय अंग है, वो इतना श्रेष्ठ नहीं है। मैं आपको सरस्वती कुल में संन्यास दिला सकता हूँ, आपका संन्यास का जो स्थिति है उसको मैं उच्च कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो पतित हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, जो है मेरे गुरु की कृपा है। फिर वो कहते हैं आपकी उम्र तो करीब 24 साल की है, आप तो इतने जवान हो, इतने सुंदर हो, आप अपना संन्यास वैराग्य बचा नहीं पाओगे, बहुत जल्दी ये समाप्त हो सकता है, इतना शरीर आपका सुंदर है, कैसे आप इस मोह को नियंत्रित कर सकते हो। फिर उन्होंने वेद पर चर्चा आरंभ किया और इन्होंने वेदांत, उन्होंने कहा कि अगर वैराग्य को सही रूप में प्राप्त करना है तो ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान जब होता है व्यक्ति को आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, तो अपने आप विरक्ति उत्पन्न होती है, तब फिर आप जाके अपने संन्यास को इस उम्र में बनाए रख सकते हो, यू कैन मेंटेन। इसलिए उन्होंने बड़ी ही करुणा से, मतलब एक पिता के प्रेम से, वात्सल्य भाव से, उनका संन्यास, एक यंग आदमी का संन्यास टिकना चाहिए, इस भावना से उन्होंने उनको वेदांत का ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े बुजुर्ग थे उम्र से, युवावस्था में सन्यासी हैं, तो शिष्य के रूप में बैठे, मतलब विद्यार्थी के रूप में, और सार्वभौम भट्टाचार्य शिक्षक के रूप में उनको शिक्षा दे रहे हैं। 7 दिन तक उनको लगातार वेदांत के विषय में बहुत गहरा ज्ञान देते हो, 7 days and 7 nights। लेकिन महाप्रभु चैतन्य जो है जैसे एकदम निर्विकार बैठे हुए, जैसे अभी आप मेरी कथा सुन रहे हैं तो कोई स्माइल दे रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई सुन रहे एकदम अच्छी तरह से, तो एक रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से। लेकिन आप सब लोग निर्विकार चेहरे से देखते रहेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, और बोलूँ नहीं बोलूँ, बंद करूँ कैसे मालूम पड़ेगा। उस तरह से वो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी सुन रहे हैं और निर्विकार चेहरा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको समझा हुआ है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, कि क्रोध आ रहा है, कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है जो मैं बता रहा हूँ, वो उनको सहमत नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 7 दिन के बाद में वक्ता भी बहुत कुशल था, 7 दिन तक खींचा उसने, लेकिन 7 दिन के बाद वो भी बेचारे थक गए, उन्होंने कहा कि अभी कुछ पूछना चाहिए उसको। तो पूछते हैं अरे महाप्रभु जी, कुछ समझ में आपको आया कि नहीं आया, क्या अच्छा लगा नहीं लगा? तब पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना मुख खोला और उन्होंने कहा कि जो वेदांत का स्पष्टीकरण आप दे रहे हो, जैसे वेदांत जो है वो सूर्य प्रकाश की तरह साफ है, एकदम स्वच्छ है, उसमें कोई वाद विवाद, कोई तर्क, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आपका स्पष्टीकरण जो है वो सूर्य जो है प्रकाशमान, उसके सामने बादल जैसा है, वो जो स्पष्टीकरण जो है वो ढक गया है आपके बादलों के थे, इस तरह से आप वर्णन दे रहे हो, मुझे लग रहा है कि जो सूरज के समान स्वच्छ प्रकाशित है वो बादलों से ढका हुआ स्पष्टीकरण आप दे रहे हो। तो उनको आज तक किसी भी व्यक्ति ने ऐसा चैलेंज नहीं किया था, उनके पूरे आयुष्य में, पूरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति तुल्य बल नहीं आया था जिसने उसमें ऐसे कोई प्रश्न किया होगा कि आपको समझ जो बता रहे हो वो स्पष्ट नहीं है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर भी वो नम्र थे, उनको ठेस तो लगी लेकिन फिर भी उन्होंने बोला ठीक है जो आपकी समझ में आया वो समझा दो। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाना शुरू किया। और जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु समझाना आरंभ किए वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, कुछ ही समय बाद सर्वम भट्टाचार्य की आंखों से आंसू आए। उन्हें कहा कि आज तक मैं इस ज्ञान के बहुत, क्या कहते हैं उसको मराठी में किचकट उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत जटिल ये सिद्धांतों में फंसा हुआ था मैं, आज आपके संग से मुझे ये इतना आसान है इसकी अनुभूति हुई कि इतना कठिन जटिल विषय को आपने इतना आसान करा के समझा दिया है कि आम तौर पे किसी को विद्वान होने की जरूरत नहीं है, एक आम आदमी भी, एक अनपढ़ व्यक्ति भी, एक स्त्री भी, एक शूद्र भी उसको बड़ी आसानी से समझ सकता है, इतना आपने आसान कर दिया है और इसके द्वारा सारे लोगों को इसको आपने ओपन कर दिया है। मैं जो आज तक सीख रहा था वो क्या था, केवल विद्वान लोगों को समझ में आएगा। आजकल तो मालूम है ज्ञानी किसको मानते हैं, वो ऐसा लेक्चर देगा किसी के समझ में नहीं आएगा, मतलब वो बहुत बड़ा ज्ञानी जितना आपको समझ में नहीं आएगा उतना वो बड़ा ज्ञानी है, मतलब उसको इतना पता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है इतना उसको पता है। ये आजकल का एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि यू टॉक लाइक दिस कि नोबडी शुड अंडरस्टैंड, कंप्लीटली कंफ्यूजिंग। तो इस तरह से जब उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया चैतन्य महाप्रभु ने, तब सार्वभौम भट्टाचार्य को ये अंदर से अनुभूति हुई कि ये भगवान है, भगवान के अलावा ऐसा स्पष्टीकरण कोई दे सकता नहीं, क्योंकि उस जमाने के वो विश्व के सर्वोच्च विद्वान थे और उनको इस तरह से परास्त करने वाले और उनसे भी बढ़िया स्पष्टीकरण देने वाले पूरे विश्व में उस समय कोई उपलब्ध नहीं था, वो था वर्ल्ड चैंपियन। तो उनको अंदर से अनुभूति हुई कि ये भगवान ही है। तो इतने बुजुर्ग उम्र के हाँ सार्वभौम भट्टाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जो जवान अवस्था में उनके चरणों में गिर जाते हैं, जैसे ही चरणों में गिर के नतमस्तक शरणागत हो जाते हैं, तुरंत चैतन्य महाप्रभु उनको षडभुजा दर्शन देते हैं। क्या दर्शन देते हैं? षडभुजा यानी कि छह भुजा वाले। वो छह भुजा में ये रहस्य है कि दो भुजा हरे रंग की थी, दुर्वा के रंग की, जो धनुष से बाण धारण किए थे, एक हाथ में बाण एक हाथ में धनुष, हरे रंग के दो हाथ, दो हाथ श्यामल वर्ण के थे, श्याम वर्ण के, दोनों मिलकर मुरली बजा रहे हैं, और दो हाथ स्वर्ण रंग के थे, गौर वर्ण के, एक हाथ में दंड एक हाथ में कमंडलू। मतलब क्या, राम कृष्ण और चैतन्य, ये तीनों दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य को उनके घर में चैतन्य महाप्रभु ने दिए और ये साबित कर दिया कि जो पहले जमाने में राम थे, उसके बाद कृष्ण थे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, वही मैं हूँ। और ये देखकर चैतन्य महाप्रभु के सामने शरणागत हो गए, वो बिल्कुल शरणागत हो गए। तो ये लीला इस जगह पर हुई है। तो ये उनका निजी निवास स्थान है। सार्वभौम भट्टाचार्य का चैतन्य महाप्रभु के अंतर्लीला में बड़ा योगदान है, कई लीलाएं हैं उनके साथ में। एक सुंदर लीला उनकी ऐसी आती है सार्वभौम भट्टाचार्य की, कि पहले तो वो बड़े विद्वान के रूप में गंभीर, नो ज्ञानी कैसे होते हैं, बहुत बात नहीं करते हैं, सीरियस रहते हैं हमेशा, हंसते नहीं ज़्यादा करके, बहुत सीरियस रहते हैं वो, निर्विकार निर्वाण के भाव में रहते हैं, आत्मा और परमात्मा एक रूप होना है, हाँ जीवन में कोई अर्थ नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे एक अलग टाइप का भाव होता है उनका। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को मिलने के पश्चात एकदम मोम की तरह मुलायम बन जाते हैं। ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से आदमी ना सख्त हृदय बनता है, उनका हृदय कठोर हो जाता है, अहंकार भी बढ़ता है, विरक्ति का भी एक अहंकार होता है कि मैं विरक्त हूं। लेकिन भक्त जो होता है उसका वर्णन किया गया है कि मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। वो हमेशा मुक्ति के पीछे भागने वाले, विरक्ति के पीछे भागने वाले, ज्ञान के पीछे भागने वाले, हाँ, और ज्ञानकांड कर्मकांड विषय भांड ऐसे भी कहा गया है, यानी कि जो ज्ञान कांड ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, विरक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी विषय ही कहा गया है, वो भी एक विषय है, उनके इच्छा का विषय है। जो कर्म का फल चाहते हैं वो भी उसी प्रकार से कर्म को फल चाहते हैं और उसका भोगना चाहते हैं, और सिद्धि चाहते हैं वो भी मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, कोई चमत्कार करके दिखाने के लिए काबिल हो जाए इसलिए मेहनत करते हैं। लेकिन सभी तीनों लोग जो है वो स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, कर्मकांड, ज्ञानकांड और सिद्धिकांड। लेकिन भक्त जो होता है वो अकेला ऐसा वर्ग है भक्त लोगों का जो खुद के लिए काम नहीं करता है, वो भगवान के लिए और उनके भक्त के लिए कार्य करते रहता है और उनका कार्य स्वयं सिद्ध होते रहता है अपने आप ही। जब वो भगवान के और भक्तों के हित में काम करते रहते हैं, उनकी सेवा में अपने को हटाकर, तो अपने आप वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य जो कठोर हृदय एक ज्ञानी विद्वान थे, एकदम मोम हृदय भक्त बन गए। और फिर एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु सबको लेकर इंद्रदुम्न सरोवर गए, जो हम कल जाने वाले हैं, वहाँ पर वो गुंडीचा मंदिर के पास में है इंद्रदुम्न सरोवर। वहाँ पर अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ब्रह्मानंदपुरी, परमानंदपुरी, ऐसे बड़े 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 संत लोग जो हैं वो सब नदी में स्नान कर रहे थे। और नदी में जैसे ही कोई प्रवेश करता है नदी में या सरोवर में, ऐसे आप में से जितने बुजुर्ग लोग हैं ना, वो बच्चे बन जाते हैं तुरंत। हाँ, जब कहीं भी पानी में प्रवेश करेंगे तो कितने भी गंभीर व्यक्ति रहेगा, पानी में प्रवेश करते एक बच्चा बन जाता है वो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक भक्त के साथ में जल क्रीड़ा करने लगे, चैतन्य महाप्रभु ने किसी एक को पकड़ा और जल उछालने लगे, नित्यानंद प्रभु ने किसी एक को पकड़ा जल उछालने लगे, फिर बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े भक्त लोग जो हैं वो ऐसे बच्चे बनकर जल उछालने लगे, और चैतन्य महाप्रभु ने सब पर इतना जल उछाला कि कोई उनके साथ कम्पीट नहीं कर सका, और सार्वभौम लग गए उनके पीछे। फिर उन्होंने उनको जल शुरू कर दिया, और अचानक बीच में महाप्रभु क्या बोले, देखो 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 राजगुरु सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे बच्चे बने हुए हैं। ऐसे महाप्रभु ने देखा। तो महाप्रभु जी ये कहना चाहते थे कि भक्ति का मार्ग ऐसा है, क्योंकि एक विद्वान ज्ञानी व्यक्ति अब भक्त बन गया, हरि नाम से प्रेम हो गया उसको और वैष्णव बन गया। हाँ, वैष्णव पदवी जो है ना वो ज्ञानी पदवी से भी श्रेष्ठ पदवी है। ज्ञानी व्यक्ति वैष्णव के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से भगवान प्रभावित नहीं होते, भक्ति से उनका दिल हम जीत सकते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति भक्त बन गया तो बालक बनने से भी उनको संकोच नहीं है, और जल में खेल रहे हैं। तो महाप्रभु विशेष रूप से दिखाते हैं ये भक्ति का परिणाम है। जब भक्ति हम करते हैं तो कठोर हृदय, कर्म फल का प्राप्त करने की इच्छा करने वाला, विरक्ति की इच्छा करने वाला, सिद्धि कामी, वो सब लोग कोमल हृदय बन जाते हैं और निरपेक्ष बन जाते हैं। हाँ, दूसरों की सेवा में रत हो जाते हैं। ये एक लीला यहाँ की है उनकी। फिर जब प्रताप रुद्र राजा और सार्वभौम भट्टाचार्य ये एक बार छत में खड़े थे और वैष्णव जन आ रहे थे, तो राजा प्रताप रुद्र जो हैं गजपति यहाँ के राजा, वो पूछते हैं कि कौन लोग हैं सब लोग। तो वो कहते हैं कि ये वैष्णव हैं, गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव, बंगाली वैष्णव हैं, और एक एक का परिचय करते हैं। ये ब्रह्मानंदपुरी हैं, ये परमानंदपुरी हैं, इनका परिचय देते हैं। फिर ये अद्वैताचार्य हैं, ये हरिदास ठाकुर हैं, सबका ऐसा परिचय करते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा भक्तों को देखा नहीं आज तक, और ये जो कीर्तन कर रहे हैं कुछ अद्भुत लग रहा है मुझे इसका कीर्तन। मैंने बचपन से, मेरा जन्म ही जगन्नाथपुरी का है, मैंने बचपन से अनेक प्रकार के भजन कीर्तन जन्म से भी सुनते आ रहा हूँ, लेकिन ये कुछ अद्भुत चीज़ है, इसमें क्या अंतर क्या है। सब लोग ध्यान से सुनिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कहते हैं कि ये लोग जो कीर्तन कर रहे हैं, इनके कीर्तन करने के पीछे कोई फल की अपेक्षा नहीं है कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मेरे परमिशन प्रमोशन हो जाएगा, मुझे पैसा मिलेगा, कोई उनकी इच्छा नहीं है। इसमें से कोई व्यक्ति भी ज्ञानी बनकर विरक्त होने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष के लिए कीर्तन नहीं कर रहा है। इसमें से कोई व्यक्ति भगवान का नाम, कोई चमत्कार शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है। इसमें से कोई भी व्यक्ति उनको जो भी जीवन में कष्ट हो रहा है वो कष्ट भी कम हो जाए इसके लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहा है। चलो आप कर्मफल के कामी नहीं हो, आप विरक्ति के कामी भी नहीं हो, सिद्धि कामी भी नहीं हो, लेकिन कम से कम भगवान मेरा दुख कम कर दो, बहुत दर्द हो रहा है, कैंसर हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मरने वाला हूँ मैं, अपनी पीड़ा या अपने परिवार की पीड़ा कम से कम कम करना चाहते हैं हम लोग। मतलब ये भक्त जो है खुद की पीड़ा भी कम नहीं करना चाहते हैं कीर्तन के माध्यम से। तो क्या है ये कीर्तन? तो ये कीर्तन प्रेम कीर्तन है। ये केवल भगवान के विषय में प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, केवल भगवान के लिए कर रहे हैं, केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। ये कीर्तन निरपेक्ष है, इसको प्रेम कीर्तन कहते हैं। तो प्रताप रुद्र जी जो है सार्वभौम जी की ये बात सुनकर बहुत प्रभावित हो गए बड़ी दिल से लगन से सेवा में लग गए। उन्होंने कहा इनके नेता चैतन्य महाप्रभु हैं, मुझे उनकी कृपा उनकी मुलाकात करा दो। तो सार्वभौम जो राजगुरु थे उन्होंने प्रस्ताव रखा, उनके भक्तों को बताया कि महाप्रभु जी इनको मिलने की इच्छा है। तो महाप्रभु जी ने ऐसा उत्तर दिया, मैं सन्यासी हूँ, मैं किसी भी राजा को नहीं मिलता, राजा भोग में लिप्त रहता है, उनके अनेक रानियाँ होती हैं, उनको धन होता है, अधिकार होता है, बहुत उनका मन जो है दूषित होता है, मैं राजा को नहीं मिल सकता। तो मैसेज पहुँच गया कि राजा प्रताप रुद्र को नहीं मिलना चाहते हो, बड़े दुखी हो गए हो। ये ब्रह्मा कैसे हैं, ब्रह्म पद से उन्होंने तुच्छ पद प्राप्त करने का प्रयास किया, उद्धव जी ने भी उच्च पद से गुलमलता बनने का प्रयास किया, ये भी सोच रहे हैं क्या फायदा है राजा बन के, ये जगन्नाथपुरी का राजा हूँ उसका उपयोग क्या है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान मेरे धाम में आए हैं मेरे राज्य में और राजा होकर भी उनको मिल नहीं सकता मैं, व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग किंग। दोबारा मैसेज भेजते हैं प्लीज। तो उस समय महाप्रभु कहते हैं और एक बार आओगे ना तो मैं तुरंत जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा, सबको छोड़ के अकेला निकल जाऊंगा यहां से, दोबारा ये बात मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। दोबारा मैसेज पहुंच गया कि भगवान ने ऐसे कहा आपको, आपके विषय में। तो बड़े दुखी हो गए वो, लेकिन उनको इच्छा थी कि मैं अभी राज वस्त्र राज अधिकार छोड़कर एक सामान्य वैष्णव बनकर उनकी सेवा करूंगा। तो रथ यात्रा आती है, बड़ी लंबी कथा है वो। रथ यात्रा के समय पर भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों का 7 ग्रुप बना देते हैं और वो 7 ग्रुप में 7 कीर्तन गाने वाले चुनते हैं, 7 ग्रुप में 7 मृदंग वाले चुनते हैं, 7 ग्रुप में 7 लीड डांसर्स जो होते हैं ना, मेन नृत्य करने वाले लीडर्स जो बाकी लोगों को डांस ऐसे स्टेप्स बदले करने के लिए गाइड करेंगे, 7 नेतृत्व वाले नाच करने वाले नृत्य करने वाले तय करते हैं, वो पूरा ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरह से 7 ग्रुप में 7 दिव्य कीर्तन शुरू होते हैं। कीर्तन इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया होता है कि सब लोग मग्न हो जाते हैं उसके अंदर, वो सब लोग अपना भान जब खो जाते हैं तो भगवान अपने आप को 7 रूप में विभाजित करते हैं और हर एक कीर्तन ग्रुप में प्रकट होकर उनके साथ नाच करते हैं। सबको लगता है कि हम कितने भाग्यवान हैं, महाप्रभु केवल हमारे ग्रुप में हैं, हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारे ग्रुप में स्वयं महाप्रभु की नृत्य करने आए हैं, सबको छोड़कर, ऐसे सबको लग रहा था क्योंकि सभी ग्रुप में महाप्रभु चैतन्य थे और किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि महाप्रभु एक्चुअली सब ग्रुप में है, लेकिन केवल स्वरूप दामोदर जो महाप्रभु चैतन्य के विशेष सेक्रेटरी थे, विशेष उनके संगी थे, उनको और उनके साथ में राजा प्रताप रुद्र खड़े थे, उनको ये दिखाई पड़ रहा था कि महाप्रभु जी 7 कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। तभी स्वरूप दामोदर और सार्वभौम जी कहते हैं कि आज प्रताप रुद्र राजा पर विशेष कृपा हुई है जो किसी भक्त पर नहीं हुई है, ये उनका दर्शन जो सत्य जो है कि 7 रूप में 7 ग्रुप में नाच कर रहे हैं वो केवल कुछ लोगों को मालूम पड़ रहा है, और महाप्रभु ऐसा नृत्य कर रहे थे कि उस समय उनकी आंखों में पिचकारी की तरह अश्रु बह रहे थे और जितने भी खड़े लोग थे वो सब भीग रहे थे उनके पिचकारी जैसे निकलने वाले अश्रुओं की धारा से। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे आँख से पिचकारी निकल रहा है, सब लोग भीग जाएंगे ना, मैं जहाँ देखूंगा वहाँ पर सब लोग भीग जाएंगे, वैसे महाप्रभु जी की आंखों से जहाँ झूम झूम के कीर्तन कर रहे थे ऐसे पिचकारी की तरह आनंद में अश्रु बह रहे थे। उसके बाद में एक बुढ़िया आई और वो बीच में खड़ी हो गई, तो राजा प्रताप रुद्र के सामने खड़ी हो गई वो, तो लोगों ने सोचा कि राजा है उसके सामने खड़ी हो गई तो बाजू में करना चाहिए, तो राजा कहते हैं नहीं नहीं उसमें जितना उत्साह है उतना मुझमें नहीं है, मैं उतना योग्य भी नहीं हूँ, वो कुछ भी ना होते हुए दर्शन भगवान का कर रही है और मैं राजा होते हुए भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, मतलब मुझ पर कृपा नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है, तो कोई बात उसको मत हटाओ। उसके बाद में बहुत देर तक भगवान रथ यात्रा में कीर्तन करते हैं, रथ यात्रा समाप्त होती है, उसके बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन से निवृत्त होकर थक कर जगन्नाथ वल्लभ बगीचा है वहाँ पर जहाँ पर हम कल जाएंगे, वहाँ पर जाके विश्राम करके लेट जाते हैं। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को बताते हैं कि यही मौका है राज वस्त्र उतार कर केवल सिंपल एक सूती वस्त्र पहनकर आप सेवक के रूप में जाना, और भगवान ऐसे आग बनकर ऐसे पड़े हुए थे, जाकर उनके चरण दबाना। तो राजा जो है राजपद राज अधिकार सब त्याग करके एक साधा वैष्णव बनकर सफेद सूती वस्त्र पहनकर, कोई अलंकार नहीं, कुछ नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कुछ नहीं, जाके चरणों को मसाज करना आरंभ करता है। फिर सार्वभौम जी कहते हैं आप गीत गोविंद का गायन करो। गीत गोविंद जो है वो जयदेव गोस्वामी ने 8वीं सदी में उसका लेखन किया था, जो महाप्रभु चैतन्य को बड़ा प्रिय था और जगन्नाथ जी को बड़ा प्रिय है और सभी संतों ने उसकी सराहना की है। तो सार्वभौम जी उसके विद्वान थे, उनको पता था उसके बारे में। तो कहते जब चरण दबाओगे तो गीत गोविंद का गायन करना। तो महाप्रभु जी आँख बंद कर बड़े हुए हैं, उनके चरण दबाए जा रहे हैं और मुख से राजा प्रताप रुद्र गीत गोविंद का गायन कर रहे हैं। बहुत देर गीत गोविंद का गायन सुनकर महाप्रभु जी की आंखों से आंसू आते हैं और फिर वो आँख खोल के देखते हैं कौन गा रहा है, कौन मेरी सेवा कर रहा है। तो कहते कौन हो आप? तो कहते मैं एक आपका सेवक हूँ। ये नहीं कहता कि मैं वही राजा प्रताप रुद्र हूँ जिसको मैं बहुत देर से आपको विनती कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। अपनी पहचान भी नहीं बताते उनको, जानबूझकर। महाप्रभु तो सर्वज्ञ है, वो सब अंतर ज्ञानी है, वो सब जानते हैं कौन क्या है, लेकिन ऐसा दिखाते कि आई डोंट नो हु यू आर। और जैसे ही वो कहते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, तुरंत उठकर उठकर गले लगा देते हैं। तब सार्वभौम जी कहते हैं कि आज आप पर चैतन्य महाप्रभु कृपा हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक हमारे मन में ये लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, ढिकना हूँ, हाँ, तब तक भगवान की मुलाकात नहीं होती है। जब तक हम अपने आप को हम कुछ समझते हैं कि हम कुछ हैं, उस भाव में भगवान की मुलाकात हमारे नहीं हो सकती है। जब हम समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो भगवान की प्राप्ति आसान हो जाती है। ये सब जो है ना, ऐसे कहते हैं कि डूबने वाले व्यक्ति के सर पर अगर आप सोने का मुकुट पहनते हो तो वो और फास्ट डूबेगा वो वजन उसको और नीचे लेके जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा मुकुट मैं राजा हूँ, तो मैं डूबने समय में मुकुट पहन के डूबूंगा बहुत जल्दी डूब जाएगा। और डूबने वाला व्यक्ति अगर मुकुट बाजू में रखता है तो अपने आप को बचा सकता है, वो थोड़ा वजन कम हो गया उसका। उसी तरह से भगवान के सामने जाएंगे, हाथी के सामने एक चींटी जाएगी, बोलेगी पंजा लड़ाओगे, तो हाथी क्या बोलेगा व्हाट ही विल से। वैसे भगवान ने हमको सब ज्ञान दिया है, पद दिया है, अधिकार दिया है, शक्ति दिया है, सौंदर्य दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, ज्ञान दिया है, सब कुछ उन्होंने दिया है। और उसी का गर्व उनके सामने करेंगे तो वो हंसेंगे, वो और उल्टा हंसेंगे और मिलेंगे भी नहीं। लेकिन इतना सब होने पर भी अगर हम नम्र रहेंगे तो उन्हें उसे भगवान की कृपा मानी जाती है। सब ऐश्वर्य होने के बाद भी जो नम्रता बनाए रखता है उसी को कृष्ण कृपा मानी जाती है। तो हमको यहाँ पर यह सीखना है, राजा प्रताप रुद्र वैसे हृदय से भी नम्र हो गए थे, जैसे महाप्रभु ने मना कर तभी वो नम्र हो गए थे, तभी समझ गए थे कि राजा होने का कोई लाभ नहीं है मुझे, राजा होने का टिकट लेकर मैं उनको मिल नहीं सकता हूँ। जब वो राजा की भावना ही त्याग कर दी, एक सामान्य व्यक्ति बन गए, तो भगवान ने उनको गले लगाया, पूरी कृपा कर दी, भगवान के अश्रु से भिगो दिया उसको उन्होंने। तब भगवान ने राजा प्रताप रुद्र को एक लीला के माध्यम से अपने पार्षदों में उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उसके कैटलिस्ट कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य। उन्होंने उनका पूरा ये, क्योंकि वो भी भक्त बन चुके थे तो उन्होंने, उनको पता था ये सब कुछ कि महाप्रभु जी का हृदय अगर जीतना है तो क्या करना चाहिए, कौन सा कार्ड दिखाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर का दिखाऊं कि अधिकारी का दिखाऊं कि ज्ञानी का दिखाऊं, कौन सा दिखाऊं कि ब्राह्मण का दिखाऊं, कोई कार्ड नहीं चला उनके सामने। जब भक्त का कार्ड निकाला तो महाप्रभु जी ने स्वीकार कर लिया उसको। ये भूमि जो है जगन्नाथपुरी, मायापुर, वृंदावन, यहाँ पर कोई भी अन्य कार्ड नहीं चलता है, एक ही कार्ड चलता है, वो भक्ति का। और उसी कार्ड को अपनाने के लिए और स्वीकार करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए आपके यात्रा के उद्देश्य को मत भूलना। हम अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य है कि हमें वो भक्ति का जो भाव है वो प्राप्त होना चाहिए। चाहे धन रहे ना रहे, विद्या रहे ना रहे, जवानी रहे कि रहे ना रहे, हाँ, जो जो अलग अलग गुण हमारे पास में रहे ना रहे, लेकिन भक्ति जरूर साथ में चलनी चाहिए। क्योंकि अंतिम क्षण में जब मृत्यु का समय आता है तो आपका कोई भी कार्ड नहीं चलता है, उस समय सब कार्ड फेल हो जाते हैं। विद्या का कार्ड, मेरे पास 10 डिग्री है, यूजलेस। मेरे पास बहुत डॉक्टर मेरा फ्रेंड है, यूजलेस। हाँ, मेरा हॉस्पिटल है खुद का, यूजलेस। बहुत पैसा है मेरे पास, यूजलेस। मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, यूजलेस। एक ही काम आएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो भी कैसे? मैकेनिकल नहीं है, रेस्क्यू यानी बचाने के लिए नहीं, प्रेम से पुकारना है, निरपेक्ष भावना से पुकारना है, मुझे वापस नहीं आना है, जन्म प्राप्त नहीं करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ये भावना से भी नहीं पुकारना है, मैं आपको चाहता हूँ। जैसे मरने के समय सबसे प्रिय जो वस्तु है उसकी याद आती है, अरे अरे मेरा पैसा, अरे मेरा बालक। अगर मरने के कुछ समय पहले आपको भगवान से प्रेम हो गया है तो मरने के समय आपको केवल भगवान की याद आएगी। जो सबसे प्रिय वस्तु है, जिस पर आपने दिल लगाया है, उसी व्यक्ति की याद मृत्यु के समय पर आती है। जब तक जीवन चल रहा है तब तक हमको उससे प्रिय होना है, उसकी प्रीति बढ़ानी है। आज प्रीति बढ़ाएंगे, उसकी वृद्धि करेंगे, परवरिश करेंगे, तो मृत्यु के समय वो प्रिय हो जाएंगे और उनकी ही याद आएगी और कोई याद नहीं आएगा, तो ही वो प्राप्त होंगे। ये रहस्य जो है ये हम धाम में आके सीखते हैं, भगवान के भक्तों के लीलाओं को सुनकर। हाँ, हरिदास ठाकुर हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, प्रताप रुद्र हैं, राजा, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, बहुत महान लोग। ऐसा नहीं कोई कोई भिखारी था, कोई लंगड़ा था, कोई लूला था, कोई अनपढ़ था, ऐसा नहीं। सब लोग बड़े बड़े विद्वान लोग थे ये सब लोग। ये सब लोगों ने सब टोपियां उतार के भगवान के चरणों में अपने आप को लीन कर दिया। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म पद छोड़कर हरिदास ठाकुर बन गए, यवन कुल में जन्म लेकर। क्या बता रहे हमको, ये सब कुछ तुच्छ है, केवल भगवान की भक्ति और प्रेम जो है वो श्रेष्ठ है। तो हम सब लोग सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को वंदन करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और वो जो शक्ति है, हाँ, अपने पास जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको त्याग देना, छोड़ देने की जरूरत नहीं है, उसका जो ममत्व है कि ये मेरा है अधिकार, ये मैं राजा का पद मेरा है, उससे जो अटैचमेंट है वो छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। राजा होते हुए भी हमारे शिवाजी महाराज भी एक बार ऐसे विरक्त हो गए थे, बोले नहीं करना राज्य हमको। तो तुकाराम महाराज ने उनको समझाया कि आप राजा हो, आप राजा नहीं हो, राज्य तो भगवान का है, आप तो नौकर हो उनके। आप सोच रहे हो कि मैं राजा हूँ और मैं राजपद छोड़ दूंगा, अरे तुम्हारा था ही नहीं पहले वो, तुम पहले से सेवक ही थे लेकिन गलत भाव में थे, जाओ एक सेवक के रूप में सेवा करो। तो फिर वापस गए और कार्य वही किया, लेकिन भाव उनका बदल गया था। उनको समझ में आया कि विरक्ति का मतलब तू छोड़ देना नहीं है, विरक्ति का मतलब सेवा करते रहना है। अर्जुन भी पहले बोले थे युद्ध करने गए, बाद में बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं इतने लोगों को विद्वान ही बनाना चाहता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं भीख मांगूंगा जंगल में, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। खुद को ध्यान में रखते हुए सारे निर्णय और सारे वाद विवाद कर रहे थे वो। भगवान ने कहा खुद को निकालो, अभी थोड़ा ऊपर उठो और धर्म के विषय में सोचो, भगवान के विषय में सोचो, जन कल्याण के विषय में सोचो। अपने पत्नी का अपमान हुआ उसी को लेकर बार बार मत दोहराओ उस बात को, बार बार अपने मेरे पत्नी का अपमान हुआ है, मेरे पत्नी का वस्त्रण हुआ है, मैं बदला लूंगा, ये खुद सारी बातों को छोड़ो भी। और भगवान ने उसको इस स्तर से लेकर उस स्तर पे पहुंचाया। फिर वही युद्ध किया उन्होंने, वही गांडी धनुष, वही युद्ध, वही धनुष बाण, वही योद्धा थे उनके सामने, सब कुछ सेम था। क्या बदल गया था? उनकी भावना बदल गई थी। अभी वो खुद के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, अब भगवान के लिए युद्ध कर रहे थे, धर्म संस्थापनार्थाय उसके लिए युद्ध कर रहे थे। और वो करते हुए क्या हुआ, उनके सारे जो खुद के एजेंडा थे वो भी पूरे हो गए, उनका बदला भी पूरा हुआ, उनका राज्य वापस मिला, अधिकार वापस मिला, जो भी सोचकर वो पहले युद्ध करने जा रहे थे वो सब भी उनको प्राप्त हुआ और साथ में भगवान की कृपा भी प्राप्त हुई। तो ये मत समझना कि भगवान का भक्त होने पर आप कंगाल हो जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे, लोग हंसेंगे आपको, ऐसा मत समझना। भगवान की भक्ति परिपूर्ण है, वो आपको सब चीज़ों से परिपूर्ण कर देगी, लेकिन हम लोग उन चीज़ों के लिए भक्ति नहीं करते हैं, हम भक्ति करते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद में जो उनको अनुकूल लगता है हमारे लिए वो हमारे जीवन में देते रहते हैं। अगर पैसा अनुकूल है तो देते हैं, पैसा प्रतिकूल है तो पैसा छीन लेते हैं उसको। ही विल डू द नीडफुल, योगा क्षेमम वहाम्यहम, जो आपके पास है उसको बचाए रखते हैं, जो आपके पास गलत है उसको छीन लेते हैं, और जो आपके पास नहीं है, जो आपको ज़रूरत है उसको दे देते हैं। कोई भी योग, कोई भी ज्ञान, कोई भी कर्मकांड भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता है। वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, आपके वाचा को अच्छा रखेगा, आपकी बुद्धि को तल्लक रखेगा, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। भगवान ने कहा है योगी नाम अपि सर्वेशा मद भक्ते अंतरात्मना, सब योगी मेरे पास पहुंचते लेकिन वो योगी जो मेरे अंतरात्मा में लीन है मुझसे, उसी को मैं प्राप्त होता हूँ, वही सर्वश्रेष्ठ योगी के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर वो जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है उसके बारे में अनुभव ले रहे हैं, उदाहरण के साथ साथ। हाँ, श्वेत गंगा धाम की, सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज की, राजा प्रताप रुद्र की, हरिदास ठाकुर की, जय जय श्री राधेश, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जै।